बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 21 दिसंबर दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, क्यों? क्यों सरकार के तमाम आश्वासनों के बावजूद बढ़ रहा है विरोध? क्या मोदी सरकार ने इस मामले में जल्दबाजी दिखाई है, या उसे अंदाजा ही नहीं था कि विरोध की आग इतनी भड़क जाएगी? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज भी देश भर के कम 5 राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के रामपुर, कानपुर और बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। रामपुर में हुए हिंसक प्रदर्शनों में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक मरने वालों की संख्या 11 पहुंच चुकी है। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में आज भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि दिल्ली में कहीं भी हिंसक विरोध प्रदर्शन होते नहीं देखे गए। वहीं हैदराबाद में मौन रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज हैदराबाद गैंगरेप के 4 अभियुक्तों के शवों को उनके परिवार वालों को सौंपने को लेकर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने शवों का 23 दिसंबर को दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। 27 नवंबर को हैदराबाद के नजदीक एक महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कथित अभियुक्तों को 6 दिसंबर की सुबह पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। ईश निंदा मामले में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने विश्वविद्यालय के लेक्चरर को मौत की सजा सुनाई है। जुनैद हफीज को 6 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का दोषी पाया गया था। कैदियों के हमले के बाद हफीज को एकांत कारावास में रखा गया है। अमरीका में पढ़ाई के बाद वो पाकिस्तान के मुल्तान में अंग्रेजी साहित्य पढ़ा रहे थे। पाकिस्तान में ईश निंदा का कानून बेहद भावनात्मक है। हफीज का केस लड़ने वाले पहले वकील की हत्या कर दी गई थी। हालांकि पाकिस्तान में ईश निंदा मामलों में फांसी की सजा पर कभी भी अमल नहीं हो पाया है। ऑस्ट्रेलिया राज्य न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अब तक की आपातकालीन सेवाओं की सबसे बड़ी तैनाती की गई है। एक अधिकारी ने कहा कि ये बहुत भयानक दिन है। एक सप्ताह के अंदर तापमान रिकॉर्ड स्तर पर है और तेज हवाओं के कारण नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सड़कों को बंद कर दिया गया है और जो लोग क्रिसमस की छुट्टियों के लिए यात्रा कर रहे हैं उनसे अपनी यात्राओं में देरी करने की अपील की गई है। कुछ लोग प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित जगह लेने के लिए कहा गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी प्रधानमंत्री माइकल मैकॉर्मैक ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के अलावा भी इसके कई कारण हैं। उन्होंने कहा,
जलवायु
परिवर्तन को लेकर बहुत उन्माद है। इस आग के लिए जलवायु परिवर्तन ही जिम्मेदार नहीं है, इसकी वजह खाद का ढेर, लोगों द्वारा आग लगाना भी शामिल है। जो लोग कह रहे हैं कि हमें अभी कोयले का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, अगर हम सारे कोल फायर पावर स्टेशन बंद कर देते हैं तो वो हमारी बिजली और हमारी ऊर्जा, जो इस समय गर्मियों के लिए जरूरी है, उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। ये थे ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी प्रधानमंत्री माइकल मैकॉर्मैक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी सीरिया में नागरिकों को सहायता पहुंचाने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया है। इस प्रस्ताव के तहत तुर्की और इराक के 2 क्रॉसिंग पॉइंट के जरिए अगले 1 साल तक सहायता आने देना था, लेकिन सीरियाई सरकार का सहयोगी रूस सिर्फ तुर्की से अगले 6 महीने तक मदद आने देना चाहता है। इस वीटो पर संयुक्त राष्ट्र की अमरीकी राजदूत कैली क्राफ्ट ने गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा,
आप सबके अचंभित होने से पहले मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। रूस और चीन के सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव पर वीटो करने के खतरनाक परिणाम होंगे। ये फैसला गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा है। सीरिया में अभी भी 40 लाख लोग संयुक्त राष्ट्र की दवाइयों, खाने और आश्रय पर निर्भर हैं। ये थे संयुक्त राष्ट्र की अमरीकी राजदूत कैली क्राफ्ट के शब्द। लीबिया और माल्टा में एक बचाव अभियान में 160 प्रवासियों को बचाया गया है। ओशियन वाइकिंग नामक जहाज में तकरीबन 50 बच्चे थे, जिनमें एक नवजात और 3 महीने का एक बच्चा शामिल था। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा था। इस सप्ताह की शुरुआत में इटली की एक कोर्ट ने जर्मन बचाव जहाज सी वॉच 3 को छोड़ने के निर्देश दिए थे। जून में इटली ने इस जहाज को तब कब्जे में लिया जब इस जहाज के जर्मन कप्तान ने प्रवासियों को इटली में उतार दिया था। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। नागरिकता कानून में संशोधन के विरोध में उत्तर प्रदेश में आज हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। इस बारे में लखनऊ से समीरात्मज मिश्र ने जो जानकारी भेजी है, आप भी सुनिए।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। रामपुर में जहां ताज़ा हिंसा की खबरें हैं, वहीं राजधानी लखनऊ में भी स्थिति तनावपूर्ण रही। राज्य के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। कानपुर में शुक्रवार को ही हिंसक झड़पों के बाद आज स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई। कानपुर के सबसे व्यस्त इलाके परेड चौराहे पर पिछले चार घंटे से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव जारी है और दोनों ओर से रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही है। कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। यहां आज भी पुलिस के कुछ वाहनों को आग लगा दी गई। राज्य में हिंसक झड़पों में अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच राज्य भर में हिंसा में शामिल 705 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4500 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हिंसा में 263 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 57 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। साइबर क्राइम के तहत 63 FIR दर्ज हुई हैं और 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जानकारी दे रहे थे लखनऊ से समीरात्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में आज कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। दक्षिण भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत जैसे प्रदर्शन आज वहां नहीं हुए, लेकिन हलचल बनी रही। जानकारी दे रहे हैं बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
आज दक्षिण भारत में कल या परसों जैसे विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन उन प्रदर्शनों का असर आज भी दिखने को मिल रहा है। दरअसल कर्नाटका के मंगलुरु में पिछले 48 घंटों में पहली बार आज दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। आपको बता दें कि गुरुवार को हुए विरोध प्रदर्शन में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। उन प्रदर्शनों का दूसरा असर एक बयान की वजह से हुआ है। कर्नाटका के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बयान दिया था कि मंगलुरु के हिंसा के पीछे केरला से आए हुए लोग जिम्मेदार हैं। इसके फौरन बाद मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर PS हर्षा ने कल केरला से आए हुए पत्रकारों को वापस केरला भेज दिया था। आज सुबह केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और ये निर्णय लिया कि केरला से सरकारी बस मंगलुरु भेजे जाएंगी ताकि केरला के छात्रों को वापस लाया जा सके। इसके अलावा केरला के सारे जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन हुए। इमरान कुरैशी, BBC, बेंगलुरु।
नीरजा जी, सीधे मुद्दे पर आते हैं। नागरिकता कानून में संशोधन के बाद मोदी सरकार ने तमाम आश्वासन दिए हैं, लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों?
मुझे लगता है उनको आभास नहीं था कि कितना विरोध होगा, उनको आभास नहीं था कि कितना गुस्सा है। और खासकर 2-3 तबकों में, मुसलमान में तो गुस्सा है ही, उनको लगता पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है और वो अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन हो जाएंगे अगर अपनी आवाज़ वो नहीं उठाते इसके खिलाफ। तो जाहिर है मुस्लिम, यंग मुस्लिम काफ़ी तादाद में आ रहा है। दूसरा है कि पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्ट लिबरल ओपिनियन सामने आ रहा है, NGOs जो इसके खिलाफ हैं, जिनको लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बेसिस ही बदल जाएगा, वो लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो शायद सरकार को अंदाज नहीं था, वो है कैंपसेस, यूनिवर्सिटी कैंपसेस से जो आवाज़ उठ के आ रही है। एक तो है कि कानून के खिलाफ, दूसरा है जो कानून प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, एक्सेस जिसको बोलते हैं ना, उसके खिलाफ एक सॉलिडारिटी। जामिया मिल्ले में जो हुआ, जो कि पुलिस अंदर गई, लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स को पीटा, और जो जो सीन सामने आए, हमारे ग्लास पेंस सारे टूटे हुए वगैरह वगैरह, उसकी सॉलिडारिटी में और कैंपसेस भी सामने आए हैं। आपको याद होगा, एक चीज़ कह के मैं रुकती हूँ, कि जब इमरजेंसी हुई थी देश में, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जो विरोध हुआ था इमरजेंसीज के एक्सेसेस के खिलाफ ज़्यादा था बनिस्बत इमरजेंसी के, तो कई बार सरकारें जो हैवी हैंड से लेती हैं ना प्रोटेस्ट को, उसका रिएक्शन कई बार ज़्यादा होता है बनिस्पत जिसका जो कारण होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है।
नीरजा जी, चर्चा में बहुत सारे पहलुओं को शामिल करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आज हमारे साथ पहले श्रोता कौन है टोल फ्री नंबर्स पे, उनसे बात कर लेते हैं।
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
जी नमस्ते, मेरा नाम रिया है।
कहाँ से बोल रही हैं रिया
जी? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
जी
जी, मेरा ये जो CAA को लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर मेरा मानना है, यदि हम पूर्वोत्तर में असम की बात करें तो वहाँ लगता है कि वो लोगों का मानना है कि जब ये CAA लागू हो जाएगा तो उनकी धर्म संस्कृति पर असर पड़ेगा, असम समझौता है कहीं ना कहीं ये उस पर भी असर डालेगा। और देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो लोगों के मुताबिक लोगों को ये लग रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है और संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है जो धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इस बिल में भारत में जो पहले से मुस्लिम्स रह रहे हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है उनका क्या है, और ये एक विरोध का कारण भी बन रहा है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी विरोध है। सरकार इस बिल को लोगों को समझाने में असफल रही है मुझे ऐसा लगता है, जिससे और विरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार को चाहिए था कि वो पहले इसके बारे में जागरूकता फैलाती और फिर धीरे धीरे इसे लागू करती तो शायद इतना विरोध ना हो पाता।
बहुत शुक्रिया हमारी पहली श्रोता दिल्ली से रिया के बाद। और श्रोता कौन है इस समय हमारे साथ?
हाँ जी सर जी, सुनील जी नमस्ते।
जी नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ सर जी।
जी बहुत स्वागत है।
हाँ जी सर, ये जो अभी जो बता रही थी मैडम उनका बिल्कुल कहना सही है सर, थोड़ा सा इन्होंने जल्दबाजी कर दी, इनका टाइमिंग सही नहीं है सर। अगर सब लोगों को पहले विश्वास में साथ में लेके अगर कुछ करते तो इतना दुख दर्द नहीं होता था सर लोगों को।
लगता है अरुण साहब से संपर्क टूट गया है। अगले श्रोता के पास जाने से पहले नीजा जी, गृह मंत्री अमित शाह बार बार कह चुके हैं कि NRC और नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है दोनों में कोई आपसी संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को इस बात पर यकीन नहीं है, क्या वजह मानती हैं आप?
देखिए दो कारण हैं, आपके जो श्रोता हैं उन्होंने बहुत अहम पॉइंट्स उठाए हैं दोनों ने। एक तो है कि जो टाइमिंग है CAA का वो असम की NRC के तुरंत बाद आया है, और गृह मंत्री ने भी दोनों को क्लब टुगेदर किया, इकट्ठा लिया है। CAA की बात उसी उसमें करते हैं जैसे वो NRC नेशनल की बात करते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो 19 लाख लोग जो नॉन सिटीजन्स हो गए हैं असम में, उसमें से 14.5 लाख हिंदू हैं और 4.5 लाख मुसलमान हैं। जो 14.5 लाख हिंदू हैं उनको अब CAA के तहत नागरिकता मिल जाएगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी। नेशनल NRC आता है तो जो गरीब तबका है, सभी हिंदू मुस्लिम जो भी होगा जिनके पास पेपर्स नहीं है अपनी नागरिकता को प्रूव करने के लिए, जो मुसलमान है वो बाहर रह जाएगा, हिंदू को CAA के अंडर नागरिकता मिल जाएगी। तो ये ब्रॉड चीज़ है, चाहे प्रधानमंत्री गृहमंत्री जो भी बोलते रहें, और मैं मानती हूँ बिल्कुल सही सजेशन दिया है। ऐसे हालात में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल नहीं कर सकते? क्या वो मुस्लिम संस्थाओं को नहीं बुला सकते बातचीत के लिए? क्या वो स्टूडेंट्स को नहीं बुला सकते? क्या वो चीफ मिनिस्टर्स को नहीं बुला सकते बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए, कि हमारा मानना ये है, हमारी तरफ से ये अश्योरेंस दी जाएगी? उससे जो ये एकदम असमंजसता है जिसकी बात हो रही है वो शायद थोड़ी कम हो जाए।
भरोसे में लेने वाली बात है। अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं, कौन है इस समय हमारे साथ? जी हेलो
जी, जी नमस्कार।
जी नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
जी मैं बिहार से मधेपुरा जिला से बोल रहा हूँ, विकास कुमार।
बहुत स्वागत है विकास जी।
जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो NRC और CAB पर जो हस्ताक्षर हुआ राष्ट्रपति का, क्या ये सोच समझ के हस्ताक्षर हुआ, ये नियम बन गया, उसको पालन किया जाएगा या उसको फिर से वापस लिया जाएगा सरकार के द्वारा? सरकार का ये मेरा नियम समझ में नहीं आता है कि जो सरकार कर देगी, युवाओं का मुद्दा जो है और हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो खराब है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, किसान की समस्या को ध्यान में नहीं रखा जाता, लेकिन मुद्दा को भटकाने के लिए, हमें जो लगता है कि मुद्दा को भटकाने के लिए ये नोटबंदी और ये कश्मीर का मुद्दा, ये एनआरसी के, इसे हमारे देश की क्या आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, किसान की स्थिति सुधर सकती है, मेरा यही कहना है सर।
बहुत शुक्रिया, ये कई बातों को इन्होंने मिला दिया आपस में। आप कुछ कहना चाह रही थी नीरज?
लेकिन ये आप बिल्कुल सही करें, कई लोगों का मानना है, सवाल है मन में, उसका जवाब पता नहीं क्या है, क्या आर्थिक स्थिति जो खराब है देश में इस समय, नौकरियां नहीं हैं, दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए क्या सीए को इस समय, टाइमिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय लाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल बहुत लोगों के मन में है आज।
सरकार ये दावा करती है कि मुसलमानों को संशोधित नागरिकता कानून से डराने के लिए इन दिनों मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, गलत जानकारी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं?
देखिए, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, और सरकार बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था सीएए को लाना, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर ऐसा है तो फिर सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से पहल होनी चाहिए। जो लोग सबसे क्रोधित हैं उनको बुलाइए, उनसे बात करिए, क्योंकि इस पूरी ये तो आग फैलती ही चली जा रही है यूपी में, जैसे हो रहा है ये तो बहुत चिंता का विषय है, साउथ तक आग फैल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय है, असमंजस है, कंफ्यूजन है, उसको कौन दूर करेगा?
बीजेपी ने 18 दिसंबर 2003 का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि राज्यसभा में उस समय विपक्ष के नेता की हैसियत से मनमोहन सिंह वो कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों में जुल्म के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में उदार रुख दिखाया जाए। ये आपने भी सुना होगा
जी, बिल्कुल।
तो सवाल ये है कि कांग्रेस के साल 2003 के उस रुख में और मोदी सरकार के मौजूदा रुख में क्या कोई फर्क देखती हैं आप?
देखिए, वो मनमोहन सिंह का जो रुख था, रवैया था कि उनको भी नरमी दिखाई जाए, नागरिकता दी जाए, पर जो चीज़ लोगों को परेशान कर रही है, बहुत लोगों को, वो है कि आपने धर्म के बेसिस को वो डिसाइड किया। आपने ये नहीं कहा कि और देशों से लोग आए हमारे देश में, बहुत सालों से यहाँ हैं, चाहे इन तीन देशों से आए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, चाहे नेपाल से आए हों, चाहे बांग्लादेश से आए हों, ना चाहे श्रीलंका से आए हों, बर्मा से आए हों, आपने तीन तक क्यों सीमित रखा, तीन देशों तक, इस्लामिक देशों तक क्यों सीमित रखा, और मुस्लिम्स को क्यों बाहर कर दिया उस कैटेगरी में, ये कह के कि रिलीजियस पर्सिक्यूशन वहाँ होता है, तो मुसलमानों का रिलीजियस पर्सिक्यूशन तो हो ही नहीं सकता।
क्या सरकार और सरकार के सलाहकारों को इस बात का इल्म नहीं था, जानकारी नहीं रही होगी कि वो ऐसा करके संविधान की मूल भावना के विपरीत काम कर रहे हैं ऐसा, या ये जानबूझकर सोच समझकर किया गया काम लगता है?
देखिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में है और जानबूझ के, तो फिर तो सोच समझ के किया ही गया है, और फिर एनआरसी को साथ में जोड़ देना, मतलब नेशन वाइड इसका इम्प्लीकेशन होने वाला है, वो दूसरी चीज़ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल मन में आते हैं कि क्या हिंदू मुस्लिम डिवाइड को लेके भाजपा फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला आ रहा है भाजपा का कि एक हिंदू को कंसोलिडेट करो भाजपा के पीछे, और वो पोलराइजेशन से ही संभव होता है। तो क्या एनआरसी आज का नया अयोध्या है, अयोध्या टू है, जिससे कि ये पोलराइजेशन हो सके? अब आप कहेंगे ये सिनिकल व्यू है, हो सकता है सिनिकल व्यू है, पर ये लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि सरकार, ऐसा आप कह रहे हैं, सोच समझ के किया है, और सरकार लोगों को बुला के बातचीत करके क्यों नहीं ठंडा करना चाह रही इसको?
कुछ लोगों का ये भी कहना है, सोशल मीडिया पर भी, कांग्रेस का भी और कुछ विपक्ष के नेताओं का भी, कि भारत जैसे देश में जहाँ पर किसी नेता से जब ये कहा जाता है कि आप अपनी शैक्षणिक योग्यता का जो आधार है, जो दस्तावेज है, आप उसे प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, तो उसी भारत जैसे देश में लोग अपना और अपने पूर्वजों का कैसे रिकॉर्ड दे पाएंगे कि वो कितने साल से रह रहे थे? यह निशाना सीधे सीधे कहाँ पर है, आप समझ रही हैं?
देखिए वो चीज़ सबको परेशान कर रही है, फिर ये हिंदू मुस्लिम से बढ़ के होने वाला है, उसका कारण ही ये है। आप लोग आम लोगों से बात करिए यहाँ, तो वो कहेंगे हम कहाँ से लाएंगे ये कागज़, हमारे पास तो है नहीं। आपके पास है, मेरे पास है, मेरे पास भी नहीं है ये कागज़ की प्रूफ करना। अब हमें ये भी नहीं पता कि कट ऑफ क्या होने वाला है, कट ऑफ 1947 होने वाला, 87 होने वाला, ये सब तो किसी को पता ही नहीं है ना, अभी तो हवा में बात हो रही है। तो
नहीं और, तो आपने कहा हवा में बात हो रही है, ये बात हवा में क्यों हो रही है? क्या इसमें क्लैरिटी नहीं लाई जा सकती थी, इसमें बहुत स्पष्टता नहीं लाई जा सकती थी? कोई इतना बड़ा कठिन काम भी नहीं था कि साफ साफ चीज़ें तय कर दी जाती?
बिल्कुल। अब देखिए पिछले दो दिन में आप देख रहे हैं कुछ भाजपा के नेता, सरकार के मंत्री भी बोल रहे हैं कि NRC इमिनेंट नहीं है, ये इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी होने वाला नहीं है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। लेकिन गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर बहुत कैटेगोरिकली बोल चुके हैं कि ये लाने वाले हैं हम, ये लाएंगे हम। तो हम किसको मानेंगे, गृह मंत्री की बात को मानेंगे कि किसी और की बात? एक और चीज़ मैं फाइनली कहूँगी आपसे, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सामने आ रही है। अगर नौजवान तबका, 18 से 25 साल के नौजवान इस चीज़ को लेके नाराज़ हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे 22 यूनिवर्सिटीज़ में है, 30 यूनिवर्सिटीज़ में है, चाहे 400 यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत ही कम है, बल्कि सब यूनिवर्सिटीज़ मैटर करती हैं, तो उनका बेस नरेंद्र मोदी का यंग इंडिया रहा है। और आज 50% इंडियंस जो हैं 25 साल की उम्र के कम हैं, और वो नरेंद्र मोदी को नेता मानते हैं अधिकतर। तो आप उनसे नहीं करेंगे क्या बातचीत अगर वो भ्रमित हो रहे हैं?
बसपा की नेता मायावती ने भी ऐसा ही एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने ये जिद नहीं छोड़ी तो बीजेपी का वही हाल होगा जो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हुआ था। ये मायावती का ट्वीट है। अगले श्रोता के पास चलते हैं हम। नीरजा जी, कौन है इस समय हमारे साथ?
हेलो
जी।
जी नमस्कार।
नमस्ते
जी, मैं एटा से भीषमपाल सिंह बोल रहा हूँ।
बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका भीषमपाल जी।
सामाजिक संस्था सजग समाज का संस्थापक हूँ।
बताइए आज क्या कहेंगे आप?
पहले तो मेरा संदीप सोनी जी और नीरजा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नीरजा जी के लेख बड़े ध्यान से पढ़ता रहा हूँ बहुत दिनों से।
थैंक यू।
तो मेरा मानना थोड़ा, देखिए कोई भी विषय होता है अपना अपना मत होता है। आज का जो सब्जेक्ट है इंडिया बोल का, इस पर मेरा मत ये है कि सरकार नाम की जो संस्था है वो समाज के लिए होती है, समाज सरकार के लिए नहीं होता। और वो संस्था सरकार की नीत और नियत दो चीजें हैं, अलग अलग शब्द हैं, नीत और नियत। तो जब दोनों ठीक होती हैं तब सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन इसे जो आज का सब्जेक्ट है, ये जो बिल हैं, इनमें नीत बेशक सही हो लेकिन नीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो विरोध आज दिखाई दे रहा है पूरे देश में, पूरा देश जल रहा है, वो सरकार की नीत के, नीत से ज्यादा नीयत के विरुद्ध है। और इसके हर चीज के अलग अलग पहलू होते हैं। मैं एक जो अछूता अलग पहलू है मेरा मानना है, मैं उसके पर थोड़े अपने विचार रखना चाहता हूँ, थोड़ा आधा मिनट समय चाहिए मुझे।
भीष्मपाल जी, आपको सरकार की नियत पर संदेह क्यों है?
हाँ वो ही मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए ये जैसे देश और समाज, इस जो जो नियत है सरकार की, उस नियत में देश समाज कम और सत्ता और सियासत ज्यादा है। वो केवल ध्रुवीकरण करके अपनी सत्ता को बचाने के पीछे, पर्दे के पीछे, इसके पीछे भावना अधिक है। और इसके दूरगामी परिणाम जो होंगे उनकी तरफ जो खतरे हैं, जो आशंका है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे भारत में कुछ सांप्रदायिक तत्व हैं जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, उसी तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सांप्रदायिक तत्व हैं, वो हिंदू रहित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। तो ये जो बिल है ये भारत के जो सांप्रदायिक तत्व हैं उनका सपना तो पूरा कभी नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक तत्व हैं, वहां हिंदू रहित राष्ट्र देखना चाहते हैं, उनके सपने को जरूर पूरा करेगा। क्योंकि वो तत्व यहाँ जब खुल जाएगा सबके लिए रास्ता, तो वहां से भगदड़ मचाने के लिए, वहां से खदेड़ने के लिए, वहां उत्पीड़न बढ़ेगा अल्पसंख्यकों का, और उसका रिएक्शन फिर भारत में होगा, और उसका परिणाम होगा फिर हिंसा, नफरत, आगजनी, और उसके कारण ध्रुवीकरण होगा। सरकार अपने, सरकार का जो मूल छिपा हुआ एजेंडा है वो फिर उसका पूरा होगा। ये सब चीजें हैं।
बहुत तो, शुक्रिया भीष्मपाल जी। और श्रोताओं को भी हमें वक्त देना होगा। नीरजा जी, भीष्मपाल जी की बात पे हम आएंगे, लौटेंगे। एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं।
हेलो
जी।
हाँ सर, मोहम्मद सईम बोल रहे हैं सर, जिला अमरोहा। हमारा कहने का मतलब ये है
जी
कि भाई भारत सरकार ने पाकिस्तान बांग्लादेश और कहते हैं अफगानिस्तान से लोग यहाँ के जो माइनॉरिटी है
आपके
हम देखते हैं खराब हो रही सर यहाँ पर अभी
आपके पीछे सर, बहुत शोर है आप थोड़ा
ना ना सर सर बात सुन लीजिए एक मस्जिद में खराब हो रही है बात
जी जी
जी तो मैं कह देता हूँ देखिए हमारे पड़ोस में जो सबसे ज्यादा जुर्म जाती है वो म्यांमार और चीन में होती है अल्पसंख्यक हो गए तो सही मतलब तो वहाँ तो हमने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वहाँ हिंदू आबादी कम है और यहाँ इन्होंने ये टारगेट रखा कि मुसलमान के हिंदू वोट को हम कंसोलिडेट करने के लिए ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमानों को ये टारगेट कर रहे हैं। मैं बता दूँ यहाँ बड़ा लोगों के अंदर बड़ी जन भावना हो गई है सरकार के प्रति, हर दिल में बड़ी नफरत हो रही है इस मुद्दे को लेकर।
बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। कार्यक्रम में शामिल हुए मुरादाबाद से श्रोता थे ये, शायद मुरादाबाद से हम साफ सुन नहीं पाए। नीरजा जी, ये एक बड़ा सवाल छोड़ के गए हैं अपने पीछे कि नेपाल, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए क्यों ऐसा जिक्र नहीं किया गया कि साहब इनको भी लिया जाएगा, इन्हें क्यों अलग कर दिया गया, ये भी एक शंका पैदा करते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि तमिल इतने आए श्रीलंका से, ये बिल्कुल सही है, सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं ऐसा क्यों किया गया और हिंदू मुस्लिम क्यों बनाने की कोशिश की गई है। और आपके दोनों श्रोता, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ आपके श्रोताओं से जो उनके ऑब्जर्वेशंस रहे हैं आज, मतलब नीत और नियत, बिल्कुल सवाल वही है, नीत तो वही क्लियर है जो करना चाहते थे, पर नीयत क्या है उस पर शक है आज कि क्यों करना चाहते हैं, सत्ता के लिए करना चाहते हैं या देश की भलाई के लिए करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोबारा सोचना पड़ेगा इस समय।
इस नागरिकता कानून में संशोधन के बाद मोदी सरकार ने क्या लगता है आपको कि और उसकी उसके मंत्रियों ने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी ज़्यादा उग्र हो गए हैं, जो सरकार चाहती तो कर सकती थी, जो सरकार ने नहीं किया इस मामले में?
देखिए, सरकार चाहती कि अपनी बात को रखती, बार बार रखती, समझाती, लोगों को बुलाती, ग्रुप्स को बुलाती और उनकी जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करती। दूसरा कि अगर प्रोटेस्ट, जो एक डेमोक्रेटिक राइट है डेमोक्रेटिक देश का, उसमें अगर आप पुलिस जाके पीटेगी, मारेगी लोगों के घर में, घरों में घुस के, और कितनी चीज़ें वायरल हो रही हैं इस समय जिससे बहुत ही दुख पहुँचता है, तो अपने देश में अगर हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते और पीटा जाएगा, बर्बरता से पीटा जाएगा, तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। और उससे भी लगता है कि ठंडा करने समझाने की बजाय जिस तरफ हो रहा, आग फैलेगी ही फैलेगी।
अच्छा, एक और बात है, राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन नागरिकता में जो कानून में संशोधन हुआ उसकी वजह से बस खबरों में विरोध प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी और पुलिस कार्रवाई, ये सुर्खियां बन के रह गई हर अखबार में। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बिल्कुल ही गायब हो गए, जिन पर वाकई चर्चा होनी चाहिए थी?
आपने जो कहा ना, जैसे कि और देशों से क्यों नहीं हुआ, ये मुद्दा है जिस पे होनी चाहिए। क्यों सरकार चाहती है, हालांकि गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया है कि रिलीजियस पर्सिक्यूशन की वजह से ये हो रहा है, कितने लोग हैं जो रिलीजियस पर्सिक्यूशन की वजह से यहाँ हैं, कितने लोग हैं जो इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से, क्या ये आंकड़े हमारे पास हैं जिसको बेस बना के इतना बड़ा कानून हम देश के सामने रख रहे हैं? तो ये बहुत ठंडे दिमाग से चर्चा होनी चाहिए थी, देश भर में चर्चा होनी चाहिए थी, एक डायलॉग के तहत होनी चाहिए थी, लेकिन ये बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी।
क्या ये बहुमत का प्रदर्शन है जो सरकार को सुनना नहीं चाह रही, जैसा कि आप कह रही हैं?
मुझे लगता है दूसरे टर्म में शायद मोदी सरकार ओवररीच कर रही है।
ओवररीच करने का मतलब?
मतलब एक जैसे आता है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं।
अच्छा, ये बहुत शुक्रिया नीरजा जी इंडिया बोल में। मुझे लगता है अब चर्चा को यहीं विराम देना होगा। हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का, नीरजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो मैनेजर कपिल देव सिंह के साथ मुझे यानी संदीप सोनी को दीजिए इजाजत। अगले शनिवार साल का आखिरी इंडिया बोल होगा, फिर होगी मुलाकात। शुभ रात्रि।